अपने घर में दाखिल हुए और आपने बुलंद आवाज में कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। आपने अपने घर वालों के ऊपर सलामती भेजी। और आप इस हदीस के अंदर जब इसका वो पढ़ती हैं कि ये किस मौके की हदीस है, तो जो मुहद्दिसीन है वो मेंशन करते हैं कि हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा उस वक्त उस घर में मौजूद थी। उम्मे सलमा से ही मौजूद एक रिवायत आती है जिसका मफहूम ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के घर में थे जिस वक्त हजरत अली और हजरत फातिमा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो चादर ओढ़ी हुई थी आपने वो चादर उनके लिए बिछाई और फिर फरमाया, आपकी हदीस का मफहूम आता है कि ये मेरे अहलुल बैत हैं, अल्लाह ताला इनको प्योरीफाई करे। तो अहलुल बैत की डेफिनेशन में अब आपको इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। नाउ लिसन केयरफुली, आई एम कीपिंग अ सिनॉप्सिस फॉर अहलुल बैत इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द डेफिनेशंस ऑफ इस्लाम विद इन द ब्रैकेट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सहाबा एंड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ताबिउन एंड तबा ताबिउन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहलुल बैत हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं मेन, आप उनको फिर फर्दर वो डिवाइड हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट कीपिंग यू इन फ्रंट, कीपिंग टू कैटेगरीज इन फ्रंट ऑफ यू। नंबर वन कैटेगरी वो है जो खवातीन आपके निकाह में थी और जिनको अजवाज मुतहारात कहा जाता है, यानी के आपकी बीवियां। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज आपके अहलुल बैत में आती हैं। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू एनीवन अबाउट दिस थिंग, इसलिए कि आप जाकर कुरान पढ़ लीजिए और आप जाकर कुरान का अहलुल बैत का डेफिनेशन समझ लीजिए। दूसरी कैटेगरी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत में रखा जाता है, स्कॉलर्स देखें आपको मालूम है ना कि जब डिस्कशंस होते थे तो बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस करते हैं कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता। सो सम ऑफ द स्कॉलर्स डिफाइंड इट लाइक दिस के अहलुल बैत दो तरह के हैं, एक है परमानेंट कैटेगरी और एक है यू कैन से अगर ये हो जाता तो टेम्पररी कैटेगरी। जैसे खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी वाइफ को डाइवोर्स हो जाती तो जाहिर बात है फिर वो अहलुल बैत की लाइन से कट जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम जानते हैं कि अल्लाह ने रोक दिया रसूल अल्लाह को, तो आपकी अजवाज आपके अहलुल बैत में आते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आपकी बेटियां आती हैं क्योंकि आपका कोई बेटा नहीं था, और आपके आपकी फैमिली आती है यानी आपके चचा और आपके चचा की फर्दर औलाद। सो दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव अहलुल बैत इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम कुरान सुन्ना एंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ सहाबा। डेफिनेटली सहाबा के एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से इंस्पायर्ड थी। तो हमारे सामने ये क्लियर है और इसमें आपके सामने मैं रख दूं, नंबर वन यू कैन से अजवाज रसूल अहलुल बैत हैं। फिर मैं आपको बता दूं हजरत अली बिन अबी तालिब और उनकी फैमिली यानी उनकी जौजा, उनके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन अहलुल बैत में डेफिनेटली ये हम जानते हैं बहुत आराम से, सही है। अभी मैं आपको और बता दूंगी डिटेल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी नहीं थी हजरत फातिमा, आपकी बेटियां हजरत जैनब, हजरत कुलसूम और हजरत रुकैया, ये तीनों की तीनों अहलुल बैत में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अल अब्बास जो के फौरन ईमान नहीं लाए थे लेकिन एक गजवे के बाद थे वो ईमान लेकर आ गए थे, अहलुल बैत की कैटेगरी में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन, हम जैसे हजरत अली को जानते हैं अहलुल बैत में, सो हम उनको क्यों भूल जाते हैं हजरत अकील बिन अबी तालिब को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात थे और बनू हाशिम से थे, अबू तालिब के बेटे थे और मुसलमान हो गए थे। हजरत अली के भाई अकील जिनका नाम आता है, अगेन एक और हजरत अली के भाई आते हैं जिनको हम जानते हैं जाफर बिन अबी तालिब, जिनको जाफर तैयार के नाम से जाना जाता था, और हम जानते हैं हजरत अली के बड़े भाई थे, अहलुल बैत में ये भी आते हैं। सो जब ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, आपकी इमीडिएट फैमिली और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली अहलुल बैत में आती है, और हमें इन सबसे मोहब्बत करनी है। हमें अपनी मर्जी के लोगों से मोहब्बत नहीं करनी। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी फैमिली में आपके मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ताला ने 6 बच्चे दिए, आप 2 बच्चों से तो बहुत मोहब्बत करें और 4 से आप कहें कि बस क्योंकि ये उनको पसंद करते हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती तो मैं अपने 4 बच्चों से अब नफरत करने लग जाऊंगी। दिस इज जस्ट लाइक दिस। सिर्फ हजरत अली और हजरत फातिमा और हजरत हसन और हुसैन अहलुल बैत में नहीं है, हम अपनी मर्जी से डेफिनेशंस नहीं स्ट्रेच कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बाउंड्रीज को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इवन बाज़ औक़ात इंसान आई कैन से लाइल्मी की वजह से या प्रेजुडिस की वजह से या शैतान की बातों की वजह से हजरत हसन रदी अल्लाहु अन को आप अहलुल बैत में रखें और हजरत हसन की औलाद को अहले बैत में ना रखें, व्हाट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन इट इज? सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद ने सहाबा की इज्जत की तो हम उनको अब अहलुल बैत में नहीं रखेंगे? यहां तक कि हम हजरत हुसैन को तो अहलुल बैत में रखें और हजरत हुसैन के कुछ बच्चों को अहलुल बैत में रखें और कुछ को हम कंसिडर भी नहीं करें, तो ये तो मनपसंद हिस्ट्री बनाना हो गया ना, मनपसंद डेफिनेशंस बनाना हो गया। और मुसलमान ऐसा नहीं करते, मुसलमान इल्म वाला होता है, मुसलमान जहां अपने आप को इल्म के साथ जोड़कर रखता है वहां वो अपनी अकल का भी इस्तेमाल करता है कि अगर किसी से गलती हुई थी सो आई शुड नॉट मल्टीप्लाई द इम्पैक्ट ऑफ गलती, आई शुड रेक्टिफाई द गलती जो किसी बड़े से हो गई थी। आपको ये मालूम है कि हजरत अली रदी अल्लाहु अन के सिर्फ दो बेटे नहीं थे? क्या हम कहें कि हजरत अली के सिर्फ दो बेटे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन? जी नहीं, हजरत हसन और हजरत हुसैन को मिलाकर, या यू कैन से हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा के अलावा हजरत अली के कुल 10 बेटे थे। सो टोटल 12 सन हजरत अली के आते हैं। अगर कोई ये क्लेम करता है कि हजरत फातिमा से सिर्फ दो थे तो इसलिए हम सिर्फ अहलुल बैत में हजरत हसन और हुसैन को रखते हैं, सो आई कैन गिव एन आर्ग्यूमेंट। अगर रसूल अल्लाह की एक्सटेंडेड फैमिली भी अहलुल बैत में आती है, हजरत अली सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले थे, तो आपके तो फर्स्ट कजन भी थे, पहले मोमिन भी थे ईमान लाने वाले बच्चों के अंदर, और उस हिसाब से अहलुल बैत में ऑटोमेटिकली आ गए आपके वो चचा जो ईमान लाए और उनकी औलादें, या वो चचा जो खुद ईमान नहीं लाए मगर उनकी औलादें ईमान लाएं, जैसे हजरत अली ईमान लाए, हजरत अकील ईमान लाए, हजरत जाफर जिनको जाफर तैयार कहा जाता है वो ईमान लेकर आए रदी अल्लाह अनहु। तो इसका मतलब हजरत अली ना सिर्फ हजरत फातिमा के रेफरेंस से अहलुल बैत में थे, हजरत अली की हजरत फातिमा के बाद और शादियां और निकाह भी हुए और अल्लाह ने उनको 10 और बेटे दिए। फाइन, हजरत अली रदी अल्लाह अन के एक बेटे जिनका नाम मोहम्मद बिन हनफिया आता है, पॉलिटिकली रिलीजियसली आपको इस्लामिक मुस्लिम हिस्ट्री में प्रोमिनेंट नाम नजर आता है, अपने सेंचुरी के प्रोमिनेंट पोलिटिकल एक्टिविस्ट। हजरत अली के एक और बेटे जिनका नाम आता है अबू बकर बिन अली। हमें तो ये बातें मालूम ही नहीं होती कि हजरत अली के बेटे का नाम अबू बकर था। यू कांट इवन इमेजिन, हजरत अली के एक बेटे का नाम उमर था, उमर बिन अली। हजरत अली के एक बेटे का नाम उस्मान था, उस्मान बिन अली। ये अल्लाह के रसूल के बाद मामला सब हुआ है और ये पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। नॉट इवन हजरत अली, हजरत अली के सिर्फ तीन बेटे नहीं थे जिनका नाम अबू बकर, उमर और उस्मान था, हजरत हसन रदी अल्लाहु अन के एक बेटे उमर और एक अबू बकर थे। हजरत हुसैन रदी अल्लाहु अन, उनके एक बेटे का नाम उस्मान था। दिस इज आर हिस्ट्री, इसको सीने से लगाने की जरूरत है और इसको सुनने और समझने की जरूरत है और इसको अपनी औलादों में फिल्टर डाउन करने की जरूरत है। हजरत अली के बेटे भी अबू बकर, उमर और उस्मान हैं, हजरत हसन के बेटे अबू बकर और उमर हैं, हजरत हुसैन के बेटे उस्मान हैं। तो अब हम अपनी मर्जी से अहलुल बैत की डेफिनेशन स्ट्रेच करेंगे और हम अपनी मर्जी से अहलुल बैत का फैमिली ट्री बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से सहाबा को अहमियत देंगे और जिसका दिल चाहेगा उसकी तकफीर कर देंगे। वेयर इज आर एकेडेमिक अप्रोच? वेयर आर आर इंटेलेक्चुअल सेंसेस? वेयर इज आर लव ऑफ कुरान एंड सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम तो दावा करते हैं मोहब्बत का, हम दावा कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की फैमिली से मोहब्बत का। हजरत अली को इन सहाबा से मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि उन्होंने अपने बेटों के नाम इन सहाबा के ऊपर रखे। ना सिर्फ हजरत अली को उनसे मोहब्बत थी, हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा को इन सहाबा से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपनी औलादों के नाम इन सहाबा के ऊपर रखे। वी नीड टू गेन इल्म, सिंपल। आज की नस्ल बहुत समझदार है, आज की नस्ल में बहुत पोटेंशियल है। वी कांट गो ब्लाइंड इन फ्रंट ऑफ रियालिटीज। आप इल्म देना शुरू करें, देखें फिर आप कि कैसे उनके अंदर निखार आता है। और अगर जिंदगी भर भी उन्होंने वो काम किया होगा, शायद जिसको उन्होंने बगैर इल्म के एक बिलीफ सिस्टम में रखा होगा, इफ यू विल गिव देम राइट नॉलेज, दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स द एसेंस ऑफ इस्लाम एंड कुरान एंड सुन्ना। एंड वी नीड टू स्प्रेड दिस टू आर यूथ। हमें अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली एकेडमिक व्यू, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये तो हर इंसान को फायदा देगा। मैंने अपनी बात ही शुरू की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तो वही होता है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो अल्लाह के रसूल के बाद ये जो हमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड नजर आती हैं, सिर्फ इल्म की कमी है। आप इल्म हासिल करें, आपकी सब नॉट्स कंफ्यूजन्स की खुलती चली जाएंगी। हजरत अली को मोहब्बत थी, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को मोहब्बत थी, अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, जब भी तो उनके नामों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रख लिए। आप मुझे एक बात बताएं, जो इंसान आपको पसंद नहीं है, उसने आपको जिंदगी में फायदा नहीं दिया, नुकसान दिया, हर्ट किया, आप कभी उसके नाम के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखती हैं क्या? कभी कोई फिरौन के नाम के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखेगा? ट्रम्प रखेंगे आप अपने बच्चे का नाम? ट्रम्प है मेरे बच्चे का नाम, मेरे घर बेटा हुआ, मैंने उसका नाम ट्रम्प रख लिया। आजकल कोई भी नहीं रखेगा। अबू जहल कोई अपने बच्चे का नाम रखता है? नहीं। हम अपने बच्चों को वो नाम देते हैं, अगर हम किसी हिस्ट्री की पर्सनैलिटी का देते हैं, तो जिनको हम रोल मॉडल बनाते हैं, जिनको हम लुकअप करते हैं, जिनके जैसा हम चाहते हैं कि हमारी औलादें बन जाएं। कुछ लोगों ने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स किए कि ठीक है, ये कुछ नाम जो हैं वो जैसे उमर और उस्मान है, ये नाम तो ऐसे हैं कि जो अरबिक नाम है तो कोई भी रख सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो सहाबा के नाम के ऊपर रखे जाएं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लूं कि अच्छा अरबिक नाम है उमर हो या उस्मान, और जिसने रखा उसने सिर्फ उसको जो है वो अरबिक नाम के तौर पर रखा क्योंकि उसका मफहूम ऐसा था, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ऑल दो मैं इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानती, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस आर्ग्यूमेंट को मान भी जाऊं, देन गो ऑन द नेम ऑफ अबू बकर। उस दौर में जो दौर ये चला आ रहा है, जो सहाबा का है और ताबेन का है और फिर तबा ताबोन का है, इसके अंदर ये इस दौर में अबू बकर का नाम इतना कॉमन नहीं था। वैसे भी हम जानते हैं ये अबू बकर नाम नहीं था हजरत अबू बकर का, आपकी कुन्निया थी, आपका टाइटल था, आपका नाम तो अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन उस्मान था आपका नाम, आपका नाम तो नहीं था, ये तो आपको कुनियत दी गई थी। और कुनियत क्यों दी गई थी? अबू बकर, बकर असल में कहते हैं अरबी जुबान में यंग को, वर्जन को, बचपन में आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कि वो बचपन में जो यंग वर्जन कैमल्स होती थे या यंग कैमल होते थे, इनके साथ बहुत खेला करते थे, तो बचपन में आपकी कुन्नियत अबू बकर डल गई। फिर वक्त के साथ साथ बाज़ स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में ये बात मेंशन की कि आपको अबू बकर की एसोसिएशन बकर वर्जन के नाम से असल में हजरत आयशा रदी अल्लाहु अनहा की तरफ से भी दी जाती थी। उसको कंटिन्यू इसलिए भी रखा गया इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाहु अनहा वो वाहिद आपकी जौजा थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि वर्जन थी। तो अगर उस अबू बकर के नाम के साथ ये सारी एसोसिएशंस थी, तो अहलुल बैत की मोहब्बत में हजरत अली ने ये नाम रखे थे अपने बेटों के, सहाबा की मोहब्बत में नाम रखे थे हजरत हसन और हजरत हुसैन ने अपनी औलादों के। तो इस अहमियत को समझने की जरूरत है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असल में अहलुल बैत से मोहब्बत कैसे होगी, जब हम कुरान सुन्नत से जुड़ेंगे, जब हम सही डेफिनेशंस को सुनेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल मोर हिस्ट्री और फिर इंशाल्लाह आई विल वाइंड अप माई टॉक। ये हिस्ट्री इसलिए जरूरी है बिकॉज ये वो चीजें हैं जो हर जहन के ऊपर से एक गफलत का गिलाफ इंशाल्लाह हटा देंगे, क्योंकि मैं आपके सामने कोई हिस्ट्री के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन और कोई लंबी चौड़ी पावर टॉक नहीं कर रही। मैं आपको बहुत सिनॉप्सिस कर करके बहुत आसान जुबान में उस हिस्ट्री को डिफाइन कर रही हूँ। देखें, करबला का वाकया हम सब जानते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ करबला का वाकया, लेकिन आप सब अल्हम्दुलिल्लाह उस करबला के वाकये का एसेंस समझते हैं और जानते हैं। आपको मालूम होगा कि हजरत हुसैन रदी अल्लाहु अन की औलाद में से जो वाहिद सर्वाइवल थे करबला के बाद, वो आपके बेटे थे जिनका नाम आता है अली बिन हुसैन बिन अली। उनका नाम अली था, हजरत हुसैन के बेटे। उस वक्त बहुत यंग बच्चे थे और ये करबला के वाहिद सर्वाइवल थे, यानी हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली बिन हुसैन, ये करबला से ये वो हैं जिनको आप जानते हैं इमाम जैनुल आबिदीन के नाम से। इमाम जैनुल आबिदीन इनको कहा जाता है, प्रोमिनेंट नाम है, यू कैन से। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बेटे हैं, सही। तो इमाम जैनुल आबिदीन एक्चुअली वाहिद सर्वाइवल थे जो कि करबला के बाद हजरत हुसैन के बेटे के तौर पर बचे हैं। इनके दो बेटे थे, लेट मी गिव यू अ स्लाइड, फिर आपको और ज्यादा मेरी बात समझ आएगी। मैं आपके सामने एक स्लाइड ला रही हूँ और इंशाल्लाह मैं इसी स्लाइड को आप, मैंने स्लाइड बनाई इसलिए थी ताकि आप लोगों को मेरी बात आसानी से समझ आए, और जो मैं आपके सामने ये फैमिली ट्री बनाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ जाए। सो द ओनली सर्वाइवर करबला के बाद जो बच्चे, यंग बच्चा था, वो हजरत हुसैन के बेटे थे अली बिन हुसैन, जिनको जैनुल आबिदीन कहा जाता है। हजरत अली के दो बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन, ठीक है। हजरत हुसैन के बेटे अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन, इनके फिर दो बेटे थे। दो बेटे कौन से थे? जैद बिन हुसैन और मोहम्मद अल बाकिर। अच्छा, मोहम्मद अल बाकिर के जो आपको फिर आगे दो बेटे मिल रहे हैं, एक हैं इस्माइल और एक हैं जाफर इब्ने मोहम्मद। सो दिस इज द फैमिली ट्री जो चल रहा है। ये करबला में जैनुल आबिदीन सिर्फ जो थे ये बचे थे। अच्छा, अगर जैद बिन अली लोग, ये जो मेजोरिटी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, इन्होंने अहलुल बैत में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अल बाकिर को रखा है, सही। यानी उन्होंने जैद बिन हुसैन को अहलुल बैत में नहीं रखा, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया बना लिया ना कि हमने जो है वो अपनी पसंद का क्राइटेरिया बनाना है। क्यों नहीं माना उन्होंने जैद बिन हुसैन को? आज भी एक तबका जैद बिन हुसैन को अहलुल बैत में नहीं रखता। और क्यों नहीं रखता? आई एम गिविंग यू द रीजन, आपको क्लिक कर जाएगी हिस्ट्री, लिख लें नाम एंड देन गो एंड सर्च ऑन गूगल, या अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप मुस्लिम हिस्ट्री में जाकर जरा डिटेल से, जिसके वॉल्यूम्स हों और जो वॉल्यूम्स आपके शुरू होते हों फ्रॉम सहाबा टिल 40th सेंचुरी, 40th हिजरी, तो आपको ये सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। हजरत जैद बिन हुसैन को अहलुल बैत में इसलिए नहीं रखा जाता, ऑल दो ये जैनुल आबिदीन के बेटे हैं, जैनुल आबिदीन द वाहिद सर्वाइवल ऑफ करबला, जिनके दो बेटे थे मोहम्मद अल बाकिर और जैद बिन हुसैन। मोहम्मद अल बाकिर को रखा जाता है इस क्राइटेरिया में कि वो अहलुल बैत हैं, जैद बिन हुसैन को नहीं रखते। क्यों? जैद बिन हुसैन ने हशाम बिन अब्दुल मालिक से जंग की थी। हशाम बिन अब्दुल मालिक वो शख्स था जिसने कूफा के अंदर एक फितना उठा दिया था, और एक तरह से यू कैन से ये वो शख्स था जिसने सहाबा को कर्ज किया था, और इसने ओपनली सहाबा को कर्ज किया था। इसने ओपनली सहाबा को कर्ज किया, दैट वाज द टाइम जब जैद बिन हुसैन मौजूद थे। जैद बिन हुसैन, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ये सब एक टाइम में थे, इवन इमाम अबू हनीफा मौजूद थे। अगर आप इमाम अबू हनीफा की भी सीरत पढ़ेंगी तो आपको वहां पर भी ये वाकया मिल जाएगा कि इमाम अबू हनीफा ने जैद बिन हुसैन का साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो था ये सहाबा को कर्ज कर रहा था। कैसे हो सकता था इमाम अबू हनीफा उसको सपोर्ट करते? तो उन्होंने जैद बिन हुसैन को सपोर्ट किया, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक, यू यू कैन फाइंड दिस इन हिज कोटेशंस, इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये जो जंग हुई थी हिशाम बिन अब्दुल मलिक और जैद बिन हुसैन के नजदीक, उन्होंने कहा था कि ये आज के दौर की बदर है, इसलिए कि ये डिसाइसिव है। हजरत जैद इसलिए जंग कर रहे थे कि इन्होंने सहाबा के खिलाफ बात की थी। हशाम बिन मलिक, अब्दुल मलिक ने कोशिश की कि अपने कुछ लोगों को ये हजरत जैद की कंपनी में और उनकी फौज में दाखिल कर दे, और ये इसके कुछ लोग हजरत जैद के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं और हम आपके एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। लेकिन जब ये जैद बिन हुसैन की फौज में आ गए तो इन्होंने आकर इनकी फौज को मिसलीड करना शुरू किया, और सहाबा को इन्होंने कर्ज किया। जब हजरत जैद को पता चला तो उन्होंने उनसे कहा कि यू कैन ओनली स्टे इन माई फोर्सेस अगर सहाबा की इज्जत करोगे, बिकॉज वो लोग थे जिनकी रिस्पेक्ट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने एन बैटल फील्ड में حضرت زید بن حسین کی فوج کو چھوڑا. صحیح. اور یہ جو چھوڑنے والے تھے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ٹرم, لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو ہسٹری. میں نے پہلے ہی بتا دیا دس از جسٹ اکیڈیمک اپروچ, دس از جسٹ آر ہسٹری, سو وی شوڈ نو دس. یہ جن لوگوں نے, جو ہشام بن عبد المالک کا گروپ تھا اور جو کریپ کیا تھا, جس نے زبردستی اپنے آپ کو زید بن حسین کی فوجوں میں گھسایا تھا صرف انارکی پھیلانے کے لیے اور صحابہ کو قرض کرنا شروع کیا تھا, ان کو جب حضرت زید نے کہا کہ یہ کام تم یہاں نہیں کر سکتے, تو انہوں نے این بیٹل فیلڈ میں حضرت زید کی فوج کو چھوڑ دیا. اور جب انہوں نے چھوڑا ہے تو پھر ظاہر ہے فوج کمزور ہوئی, فوج کمزور ہوئی تو حضرت زید بن حسین اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور یہ جو چھوڑنے والے تھے ان کو پھر بعد کے سکالرز نے الرافدہ کہا ہے. را الفا دود گولتا الرافدہ, رافدہ عربی زبان میں کہتے ہیں ریجیکشنسٹ. ریجیکشنسٹ کیوں ہیں؟ بیکاز دوز ہو ریفیوز, یہ وہ تھے جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے. حضرت زید بن حسین کی فوج کو انہوں نے کمزور کیا تھا بیکاز انہوں نے این بیٹل فیلڈ میں چھوڑ دیا گیا چھوڑا تھا. اور حضرت زید کو اہل البیت میں شامل نہیں کیا جاتا. اب آپ کو سمجھ آیا کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی جنہوں نے صحابہ کی انسلٹ کی تھی, جنہوں نے صحابہ کو عزت اور مقام نہیں دیا تھا. ہمارے بعض سکالرز کے نزدیک دا ٹرم الرافدہ از جسٹ لائک ایز جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں گستاخ رسول. دا رافدہ ٹرم از ناٹ ان اے گڈ کانوٹیشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ. میں نے صرف آپ کے سامنے ہسٹری رکھی ہے. آئی ول نیور ڈکلیئر اینی ون ایز اے رافدہ, بیکاز یہ بالکل جیسے آپ اور میں کسی کو اس وقت گستاخ رسول نہیں کہتے. اٹس لائک جیسے جو غلطی کر رہا ہوتا ہے, ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کو کبھی ایسے بلاتی ہوں, او بے نمازی ادھر آؤ. ہم نہیں بلاتے نا اس کو ایسے. ایک انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے, مگر آپ اس کو ایسے نہیں بلاتی, او کبیرہ گناہ کرنے والے ادھر آؤ. سو جہاں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہسٹری کو رکھوں, وہاں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان امپورٹنٹ جو کامنٹس ہیں اسکالرس کے ان کو بھی رکھوں, کہ ایک عام سینسیبل مسلمان الرافدہ کہہ کر کسی بھی دوسرے انسان کو ایڈریس نہیں کرے گا. یہ اسکالرس کے لیولس کی ڈسکشنز ہیں, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کل کو اگر آپ کے سامنے یہ اصطلاح آتی ہے تو آپ کو اس کا ترجمہ یا آپ کو اس کا مفہوم یا آپ کو اس کا لٹل بیک گراؤنڈ ضرور آتا ہو. اس لیے کہ ہم نے قرآن سے اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے یہ سیکھا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو قرض نہیں کرتے. وی ڈونٹ پش دیم اوے. کیوں؟ قرآن ہم سے کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام ہے حق پہنچا دینا. ہم کسی کے زبردستی حلق سے حق کو اتار نہیں سکتے. آئی کین کنوے بٹ آئی کین ناٹ کنوینس اینی ون آف یو. اللہ آپ کا دل کھولے گا جتنی آپ کی دل کی وہ تڑپ دیکھے گا. قرآن میں اللہ کے رسول سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت. آپ تھوڑی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ ہدایت والوں کو کمپلیٹلی جاننے والا ہے. تو حضرت زید بن حسین کو اہل البیت میں بعض لوگ نہیں رکھتے جسٹ بیکاز انہوں نے صحابہ کی سپورٹ میں ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ہشام بن عبد المالک سے جنگ کی تھی, اور محمد الباقر کو اہل البیت کے اندر رکھا جاتا ہے. تو آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ سنا ہے زیدیہ. جو زیدیہ اسکول آف تھاٹ ہے, دس از ایکچولی فرام زید بن حسین, جن کو اہل البیت میں کاؤنٹ آج بعض لوگ نہیں کرتے ہیں. زیدیہ اسکول آف تھاٹ جو ہے, یہ ایکچولی زید بن حسین بن علی ان کے فالوورز ہیں زیدیاز, اور دے آر ایکچولی ویری کلوز ٹو اہل سنہ وال جماعت. دے ڈونٹ کرس صحابہ, دے ایکسیپٹ دیم ایز گریٹسٹ پیپل. صرف فرق کیا ہے اہل سنت وال جماعت اور زیدیہ سیکٹ کے اندر, کہ ان کا خیال یہ ہے دیٹ علی واز اے بیٹر چوائس ایز اے خلیفہ as compared to حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان. This is the only problematic issue between اہل سنت والجماعت and the زیدیہ جماعت. Otherwise, یہ initially جو تھا یہ بہت proper ایک اس pattern کے اوپر تھا جب تک کہ حضرت زید بن حسین تک تھا. Unfortunately, اسی کے اندر آج کل کچھ ایرانین ورژنس جو ہیں وہ آ گئے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر لے کر آئے. بٹ آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی بن حسین زین العابدین کے دو بیٹوں میں سے ये कहना कि सिर्फ मोहम्मद अल बाकर अहलुल बैत में आते हैं और जईद बिन हुसैन नहीं आते, दिस इज टोटल डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज सेल्फ क्रिएटेड डेफिनेशंस। और ये इंसान जब ये अप्रोच रखता है तो वो ब्लाइंड फॉलोइंग में रखता है, चाहे गफलत की ब्लाइंड फॉलोइंग है, या वो किसी बुजुर्ग की गलती की ब्लाइंड फॉलोइंग है, या वो शैतान की तरफ से जो है वो ये चीज दिया गया है। हमारे लिए ये जितने नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, हमारे लिए इनमें से एक एक हस्ती अहलुल बैत में आती है। हम इन सबको अहलुल बैत में रखते हैं, हम इन सबका एहतराम करते हैं, हम इन सब से मोहब्बत करते हैं। और हमारा पॉइंट ये है कि हम तमाम सहाबा की इज्जत, उनकी तकरीम और उनके सोर्स को जो उन्होंने इल्म के तौर पर हमारे सामने रखा है, हम उस सब को अपने साथ कनेक्ट रखते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला होलिस्टिकली हमें अहलुल बैत की डेफिनेशंस को समझने की तौफीक दे, अल्लाह हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें सोर्स ऑफ एजुकेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज को अपनी जिंदगी में अहमियत देने की तौफीक दे, हम कुरान को अल्टीमेट गाइडेंस बनाएं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अल्टीमेट गाइडेंस बनाएं, और हम सहाबा को, ताबेईन को, तबा ताबेईन को इज्जत देने वाले, एहतराम करने वाले, उनको लुकअप करने वाले बने। और जहां जहां हम में गलतियां हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी गलतियों की तरफ जो है वो देखें, रुजू करें, अपनी इसलाह करें और अपने आने वाली नस्लों को दुनिया का हसना दिखा कर जाएं। खुद पाएंगे तो उनको दिखाएंगे, खुद ना पाया तो उनको कैसे दिखाएंगे। तो अल्लाह हम सबको उस इस्लाम पर चलने वाला बना दे जो इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है और जैसा अल्लाह हमारे लिए चाहता है। अल्लाह हम सबको दुनिया का और फिर अल्टीमेटली आखरत का हसना अता फरमाए। अल्लाह हम सबको टॉलरेंस के साथ और हिकमत और रैशनल वे में मोहब्बत और अखलाके रसूल के साथ इल्म को फैलाने वाला बनाए। अल्लाह ताला जो हमने यहाँ कहा उसमें से जो हक है उसको हमारे दिलों में उतार दे। अल्लाह अगर बात को बताने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाइए, अल्लाह हमें रोज़े महशर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौद से पानी पीना नसीब फरमाइए, हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदकाए जारिया बनाइए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। जजाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।